शांति शांति शांति। आज डॉक्टर सैनी डॉक्टर पटेल इंद्रवदन विषय दिया है समदर्शन। समदर्शन पर आपके समक्ष विचार विमर्श करना है। आप सब यहाँ बैठे हैं, किसी को बैठने में कोई भी असुविधा हो तो बड़े प्यार से कुर्सी पर जाना, सबके लिए भाव है, प्रेम है, लेकिन आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं माँ भी हूँ, पिता भी हूँ, गुरु हूँ, इसलिए कोई मर्यादा वाली बात नहीं है। अगर किसी को नीचे तकलीफ हो तो बड़े प्यार से नर या नारी में, शिष्य शिष्या में, शुभचिंतक में, जो भी कुर्सी पर बैठना चाहें बैठ सकते हैं। कहीं यहाँ संकोच की बात, विवशता की बात, दबाव की बात नहीं है। ये आपका घर है, घर में खुद रिलैक्स रहिए, सहज रहिए, और ये आश्रम का पर्यावरण, वातावरण या नियम आपके दबाव के लिए नहीं है, दबाव से मुक्त करने के लिए है। ये ध्यान में रखते हुए हमें नियम का पालन करना है। विषय दिया गया समदर्शन। इसके पहले कुछ बात आपको बताना चाहिए। अभी दो चार दिन पहले थोड़ा फिसल गया, सिर में चोट आई, तो कल भी एक फोन आया कि स्वामी जी आपके सिर में चोट है तो आप रविवार को प्रवचन करेंगे। मैंने कहा आप आ जाइए, करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। ऐसा है, आप भीष्म पितामह का, ये आपके लिए भी है, मेरे लिए है, तो मेरा प्रसंग बना, इसलिए मैं पूछा गया मेरे से कि क्या रविवार आप प्रवचन करेंगे। मैंने कहा हाँ हम करेंगे, लेकिन प्रेरणा कहाँ से मिली तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। महाभारत का वह दृश्य आप सामने रखे, ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए। वान सैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, नीति राजनीति धर्म व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से समय समय पर, कभी अर्जुन को, कभी कृष्ण के साथ वार्तालाप में, कभी द्रौपदी को, किसी न किसी तरह से सर्वोत्तम विचार भीष्म पितामह के मुख से मुखरित हुआ है। ये तो एक आपके सामने विचार रखा है, लेकिन मनोवैज्ञानिक विचार है। आज के मनोवैज्ञानिक हमारे शास्त्रों का अध्ययन, कहानियों का अध्ययन, मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक देश काल की परिस्थिति, नीति राजनीति के आधार पर परख रहे हैं और हमें बता रहे हैं। अगर आप देखें तो दुनिया में, चाहे मैं रामायण की प्रकट होने की बात करूं, महाभारत की बात करूं, कुरान की बात करूं, बाइबल की बात करूं, या किसी विशेष महापुरुष की बात करूं, चाहे वह भारत का है या बाहर का है, विदेश का है, अमेरिका, कहीं भी है, आपके जीवन में, पूरे विश्व में जो भी सफल हुए हैं, चाहे कहीं भी जन्मे, लेकिन दुख में से ही, चोट खाने के बाद ही, वानरसैया पर लेटकर ही सर्वोत्तम विचार प्रकट हुए हैं। अच्छी तरह से महाभारत पढ़ें तो आप देखेंगे कि जो उत्तम विचार हैं वो वानरसैया पर जब भीष्म लेटे हैं तब प्रकट किया, लेकिन हाथ जोड़ करके केवल आपको इशारा करूंगा। भरी सभा में, सुख सुविधा में बैठे हुए द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी वहां पर द्रौपदी का अपमान हो रहा है, लेकिन हमारी सुविधा वंचित न हो जाए, ये मनोवैज्ञानिक विचार है। पितामह इच्छा मृत्यु वाले हैं, द्रोणाचार्य जी भी जब तक पुत्र के मरण का समाचार नहीं सुनेंगे मर नहीं सकते, वो भी अमर, लेकिन फिर भी एक अबला नारी पुकार पुकार के बोल रही है और सिर नीचे करके बैठे हुए हैं। ये बात न पितामह की है न द्रोणाचार्य जी की है, ये बात ये है कि सुविधा में, ये मनोवैज्ञानिक विचार है, सुविधा चाहने वाले, सुविधा में रहने वाले वो अन्याय का विरोध नहीं कर सकते, ये मनोवैज्ञानिक विचार है। वानरसैया पर या फांसी के तख्त पर चिरस्थायित्व का अंतिम जो विचार है क्या है? हे प्रभु, ये नादान है, इनको माफ कर दो। पुराण अगर पढ़े हैं तो पैगंबर का भी जो अंतिम विचार है वो यही है कि सबका भला करो, दुश्मनी को मिटाओ, विरोध को मिटाओ। भगवान बुद्ध का भी है, महावीर का है, सबका है। भगवान बुद्ध पर कितनी तकलीफें आई, जो जैन समाज उनसे पूछिए कि महावीर पर कितनी तकलीफें आई। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, इस धरती पर आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जहां भी हैं किसी रूप में, जिम्मेदारी से भागने के लिए बहुत हमें सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन जो जिम्मेदारी आपको हमें मिली है उसे निभाने में कदम कदम पर जहर पीकर पचाकर चलना पड़ेगा। इस जीवन का अंत करने के लिए केवल एक बार जहर पीना है, लेकिन जीवन को आगे बढ़ाने के लिए रोजाना जहर पीकर पचाना पड़ेगा। कोई अपमान करेगा, कोई विरोध करेगा, कोई बिना जरूरत बेकार की बात करेगा धोबी की तरह। इसलिए हमारे यहाँ जो समदर्शन की बात आई, जो आज आपके सामने विषय दिया गया, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गर्भस्थ सुनचौ सुपाके च पंडिता समदर्शिना, बड़ा अच्छा विषय दिया। क्या भागने से समस्या हल होगी कि समस्या बढ़ेगी? आजकल पेपर में पढ़ रहा हूं, किसी न किसी विशेष परिस्थिति के कारण, कहीं किसान की बात आती है, कहीं देवा की बात आती है, आप पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ता हूं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो क्या आत्महत्या करने से समस्या हल होगी? क्या समस्या का समाधान है? आत्महत्या नहीं करनी है। वेद उठा के देखिए, हत्या करनी है निराशा की, कमजोरी की। हमारे आपके अंदर कर्तव्य पालन करते समय जब हम किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता कि आप पलायनवादी बनते हैं, तो हमारी जो कमजोरी है, हमारी जो नकारात्मक बातें हैं, हमें धोबी को नहीं मारना है, लेकिन धोबी ने जो हल्की बात कही उसे मार डालना है। हमें विरोध करने वालों को नहीं मारना है, लेकिन विरोध के जो शब्द हैं उनको कुचल देना है। हमें दुश्मन नहीं खत्म करना है। एक दुश्मन मारोगे, दूसरा तैयार होगा, तीसरा होगा। हमें दुश्मनी खत्म करनी है। इसलिए आज का विषय बड़ा सुंदर है, कर्म करने के कारण आप दुखी नहीं हैं, लेकिन फल आपके अनुकूल नहीं मिल रहा इसलिए दुखी है। लेकिन अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों के मेल से ही हमारी जिंदगी बनी है। चाहे रामायण पढ़ें, चाहे महाभारत पढ़ें, चाहे कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें, आज पढ़ें, कल का पढ़ें, महावीर का, भगवान बुद्ध का, शंकराचार्य जी का, निर्वाण का, चाहे जी का, तुलसीदास का, कबीर का, किसी का जीवन पढ़ें, भगवान बुद्ध का कि महावीर का, चाहे कहीं भी जन्म हुआ, लेकिन अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों का हमें स्वागत करना पड़ेगा। हम आप एक साथ कहीं भी रहें, आश्रम में रहें, हरिद्वार में रहें, सुबह भी देखेंगे, दोपहर भी देखेंगे, शाम भी देखेंगे, रात भी देखेंगे, ये चक्र चलता रहेगा। और एक महीना अगर हरिद्वार नदी के किनारे, गंगा किनारे बैठ के भजन करेंगे तो भी पूनम भी देखेंगे, अमावस भी देखेंगे। नहीं स्वामी जी, हमें ऐसा स्थान बताइए जहाँ रात न होती हो, जहाँ शाम न होती हो, जहाँ अमावस न होती हो, क्या यह संभव है? नहीं। जहाँ भी आप रहेंगे, सुबह भी होगी, शाम भी होगी, अमावस भी आएगा, पूनम भी आएगी, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता आएगी, क्योंकि आप जीवित हैं। और मैं जहर पी के मर गया तो सुबह हो कि शाम हो, अमावस हो कि पूनम है, मरे हुए भी है क्या? इसलिए ऋषियों ने कहा है आत्महत्या मत करो। जिन कारणों से दुखी हो उसकी हत्या करो। आप चिंता से दुखे, चिंता की हत्या करो, फांसी में चढ़ा दो, चिंता करो। आपके चढ़ने से क्या घर की समस्या हल हो जाएगी? इसे चिंता को फांसी में चढ़ाओ, आप आनंद में रहो। आपकी जो नकारात्मक बातें हैं उन्हें पानी में डुबा दो, बेकार की बातों को शमशान में जला दो। आप कई बार आत्मदाह की बात आती है, सामाजिक परिस्थिति देखकर कोई व्यक्ति आत्मदाह करता है तो क्या आत्मदाह करने वालों को वहां तक कुछ मिला? पुलिस की गोली से कितने मरे? और मर रहे तो क्या शहीद कहलाते हैं? लेकिन एक लक्ष्य लेकर के, एक कल्याण की भावना लेकर, जब भगत सिंह मरे, आजाद मरे तो शहीद हो गए, या विचार कीजिए। भगवान शंकर नीलकंठ इसलिए बने कि देवताओं के सुख के लिए उन्होंने जहर का पान किया, मरने के लिए नहीं, देवताओं के सुख के लिए। इसलिए जहर पी के अगर कोई मरता है तो शहीद नहीं है। गलत काम करके पुलिस के गोली से मरने वाला चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह नहीं है। कुछ जीवन का मिशन होना चाहिए, कुछ लक्ष्य होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो समदर्शन की बात की गई है, ये सबके लिए है। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सब रहो। दर्शन का विचार होता है समदर्शन। पंडिता समदर्शिना शास्त्र का, हमारे सामने चाहे घटना कैसी भी घटे लेकिन प्रभावित न होना, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। समवर्तन की बात नहीं कही गई, समदर्शन की बात। इसलिए जब भी आप कोई अच्छा मिशन लेकर चलेंगे, चलो अर्जुन की बात ले लो, राम की बात ले ले, पूरे जगत में जितने भी सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित किसी भी क्षेत्र में हुए हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में या जगत क्षेत्र में, कोई राष्ट्रपति बना, कोई प्राइम मिनिस्टर बना, कोई कलेक्टर बना, कोई है, सब यहाँ भी अच्छे अच्छे बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, क्लास वन बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ। तो जब जिम्मेदारी इतनी बड़ी मिली है तो रामायण को देख लीजिए कि महाभारत को देख लीजिए, जिम्मेदार लोगों के सामने ही परेशानियां आई। अब वेद का एक मंत्र सुना दो, जो चैतार्थ होता है, ना मैं भक्त प्रदर्शित, कभी सुना होगा, नहीं सुना तो सुना देते। जो मेरा भक्त है, मेरा नाम राम नहीं, कृष्ण नहीं, शिव नहीं, ये मेरा, जिसे आप मानते हैं, आप शिवजी को मानते हैं कि राम को मानते हैं, किसको मानते हैं, अम्बाजी को मानते हैं, काली माँ को मानते हैं, चंडी को मानते हैं, वो मेरा, मेरा नाम यहाँ कृष्ण का नहीं है। मामेकम शरणम ब्रज को किसने कहा, लेकिन कृष्ण प्रतीक है, ये आप सबके लिए है। तो इसको जा समझिए, आप शिव के भक्त हैं तो शिव का जीवन पढ़िए शिव पुराण से, आप राम के भक्त हैं तो रामायण पढ़िए, वाल्मीकि रामायण, तुलसी कृष्ण रामायण, अध्यात्म रामायण पढ़िए, आप किसके भक्त हैं श्रीमद् भागवत पढ़िए, आप महावीर को मानते हैं जैन धर्म का अध्ययन कीजिए, आप बौद्ध धर्म बुद्ध का अध्ययन कीजिए। तो आज पूरा विश्व का रहा है, जिसे आप मानते हैं विकट से विकट परिस्थिति में जो आस्था को विश्वास को विकट से विकट परिस्थिति में जो आस्था और विश्वास श्रद्धा का त्याग नहीं करता, नामे भक्ता प्रदर्शित, विकट से विकट परिस्थिति में आस्था विश्वास श्रद्धा का जो त्याग नहीं करता वही प्रभु का भक्त है, वही शिव का भक्त है, राम का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, अम्बा जी का भक्त है, काली माँ का भक्त है, चंडी का भक्त है, वैष्णो देवी का भक्त है, गंगा का भक्त है, नर्मदा का भक्त है, जिसे भी मानता है। अब वही चीज बताई गई, ध्रुव का जीवन ले लो, प्रहलाद का जीवन ले लो, कितनी विकट से विकट परिस्थिति आई, लेकिन आस्था श्रद्धा विश्वास में कभी भी मन डगमगाया नहीं। होगा कोई कर, अर्जुन के सामने भी कितनी विकट से विकट परिस्थिति आई, ये तो अर्जुन की बात का तो आज पूरे विश्व में गीता के माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है। या विचार कर, हम सब अगर विज्ञान से देखें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहता है कि अंतरिक्ष में से हर चीज प्रकट होती है और वापस अंतरिक्ष में जाती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब कहा कि अंतरिक्ष में से हर चीज प्रकट होती है वापस जाती है तो पूरे विश्व ने स्वीकार किया। हमारे ऋषियों ने कहा कि परमात्मा में से हम प्रकट होते वापस परमात्मा में जानते हैं, जो चीज जहां से प्रकट होती वापस जाएगी, ये तो नियम है। तो वैज्ञानिक का विचार तो पूरे विश्व ने स्वीकार किया, लेकिन हमारे ऋषियों के विचार को बहुत दबी जबान से लोग स्वीकार कर रहे हैं। आज भी आप सब आए हैं, कोई अहमदाबाद, कोई बड़ौदा, कोई सूरत, कोई नवसारी, कोई पास के गांव से, लेकिन अपना प्रोग्राम पूरा करके वापस जाएंगे, तो जो जहां से आया वापस जाएगा, ये विज्ञान भी कहता है और वेद भी कहता है। कल जब आप आए थे तो आप भी थे, मैं भी था, आज भी आएंगे, गए आना जाना तो लगा रहेगा। इसी आने जाने को प्रकट होना अप्रकट होना, जिसे बाद में जन्म मृत्यु कहा जाता है, बाकी मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है। मुझे सम दर्शन पर बोलना है, मृत्यु पे नहीं, लेकिन एक इशारा करता हूं, मृत्यु नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं। विज्ञान भी कहता जो अस्तित्व है उसका प्रकट होना जन्म है, तिरोहित हो जाना मृत्यु है, बाकी तिरोहित होने पर भी उसका अस्तित्व बना रहता है, उसका मरण नहीं होता, किसी चीज का भी अस्तित्व। विज्ञान भी कहता है नास तो विदेश भाव ना भाव, वेद कहता जो है किसी न किसी रूप में है, आकाश वायु, वायु का कभी विनाश नहीं, अग्नि जल और पृथ्वी समय पर तिरोहित हो जाते। अब वायु की बात लीजिए, आप चेतन नहीं बना सकते, देख नहीं सकते, इसका मतलब थोड़े आप इनकार कर देंगे कि वायु का अस्तित्व नहीं है, इसकी अनुभूति है। पानी भी जब बर्फ बनता है तो सॉलिड हो जाता है, अब गर्म करते तो वेपर बन जाता है, वाष्प बन जाता है, लेकिन फिर उसे आप कंडेंस करके फिर पानी बना सकते हैं, विनाश कहाँ हो रहा उसकी व्यवस्था, या विचार करें। इसलिए इस समय मृत्यु पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सारा मृत्यु नाम की दुनिया में कोई चीज ही नहीं, और यही वेद कहता है कि आए मानव तेरे सामने सबसे बड़ी समस्या मृत्यु की है, और मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो जब तुम मृत्यु से नहीं डरता तो छोटे मोटे दुखों से डरने की क्या जरूरत है। महादुख तो मृत्यु है, और मैं कह रहा मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसलिए वेद कहता है, अभी आप चले कहीं से भी चले, धीरे धीरे सूरज ढल जाएगा, फिर रात होगी होगा, तो वेद एक शब्द कहता है, अरे व्यक्ति तू चलता रह चलता रह, इस समय का जो समय है 2 घंटे में बदल जाएगा, समय बदलने की इंतजार मत कर, समय तो अपने आप बदलेगा, इसको जा समझिएगा, ये आप सबके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। आए व्यक्ति तू चलता रह, चरैवेद वेद करता है, आए व्यक्ति तू चलता रह, चरैवेद चलता रह चलता रह, समय अपने आप बदल जाएगा। आप सुबह निकले और बड़ौदा पहुंचे, तो आप बड़ौदा पहुंचे तो समय बदल गया, ऐसा नहीं कि समय के बदलने से बड़ौदा पहुंचे। आप अहमदाबाद से 6 बजे चले और 9 बजे बड़ौदा पहुंचे, तो 9 बजे बड़ौदा पहुंचने से समय नहीं बदला, समय तो अपने ढंग से बदल ही रहा है। इसलिए वेद कहता है, आए व्यक्ति तू अच्छे समय का इंतजार मत कर, हर समय अच्छा, तू चलता रह समय अपने आप बदल जाएगा, समय बदलेगा तब मैं करूंगा, इस विचार में जिंदगी खत्म करने की जरूरत नहीं। कितने लोग मुझे कहते हैं, महाराज अच्छा समय आएगा फिर हम दान करेंगे पुण्य करेंगे हरिद्वार जाएंगे। मैंने कहा वो तो मरने के बाद ही आएगा, उसके पहले कोई भेजने वाला नहीं। अभी थोड़े दिन पहले की बात बताऊं, मैं प्यार से करता हूं, किसी ने मुझे समाचार दिया स्वामी जी फलाने व्यक्ति की मौत हो गई, मैं कुछ बोला नहीं। फिर दोबारा फोन आया कि स्वामी जी कुछ लोगों का ऐसा है कि शायद आप आएंगे, तो मैंने बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा इस समय बोलूंगा तो बड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन आपको सुना देता हूं बाद में फिर जाएगा। तो मैंने कहा ये व्यक्ति नामी है ठामी है, उसके सारे रिश्तेदार नातेदार आश्रम में आते हैं, अब तो मर गया मैं क्या कहूं, लेकिन आप बताइए कभी वो मेरे से जीते जी मिलने आया जो मरने पर मैं मिलने जाऊंगा। ऐसा ठीक है, मैंने कहा है लेकिन कभी आया आश्रम, तो जीते जी जो नहीं मिलने आया, तो इस समय बड़ी बातें कड़वी है मैं कहना नहीं चाहता। तो एक बात बताता हूं, या विचार कीजिए, आप कहेंगे स्वामी जी आप कहना क्या चाहते हैं, मैं कहना यही चाहता हूं, आज जो करना है कर लो निश्चिंत होकर, और आप आज की जो आशा निराशा है उसे दफना दो, और कल नए सूरत के साथ नए विचार लेकर काम करो, पिछली बातें याद करके जीवन का सत्यानाश करो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये जो रामायण की बात करता हूँ महाभारत की बात करता, कितनी बिगड़ से बिगड़ परिस्थिति आई, राम के सामने जितनी कठिनाइयां आई हैं उतनी हमारे आपके सामने नहीं, पांडवों के सामने जितनी कठिनाइयां आई हैं उतनी हमारे आपके सामने नहीं आई। इसलिए वेद कहता है चलते रहो, चल कुछ भी हो, लोग सारी रात हाय हाय बोलेंगे लेकिन राम राम नहीं बोलेंगे, सारी रात जाकर हाय हाय हाय, और यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, हाय हल्का शब्द है, और आज वैज्ञानिक कहते हैं कि हल्के शब्द बोलने से पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, राम बोलने से पर्यावरण शुद्ध होता है, ये वैज्ञानिक प्रयोग है, और हाय बोलने से पर्यावरण गलत होता है। और पर्यावरण गलत है, पर्यावरण है क्या? यहाँ वैज्ञानिक बैठे प्रोफेसर, आपका पर्यावरण है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। एक व्यवहारिक बात आपको बता दूं, ये विज्ञान वाली बात को व्यवहारिक रूप में, मेरी माँ मुझे पानी पिलाए, मेरी माँ अपनी गोद में पास में बैठाए, मेरी माँ स्पर्श करे, माँ पिता कोई, मेरी माँ अच्छे शब्द बोले, तो आप कितने प्रफुल्लित होते हैं या विचार के लिए। अरे माँ कभी क्रोध में बोलेगी तो उसके मन में पाप नहीं होता, और दूसरे कितना मीठा बोले आधा पाप लेके बोले। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। जब हमारा लड़का फर्स्ट क्लास पास होगा तो कोई नहीं पूछता कि स्वामी जी आपका लड़का फर्स्ट क्लास पास हुआ, कोई नहीं पूछता जान करके। और एक नंबर से कम रह जाए, स्वामी जी आपके लड़के क्या हुआ, मैं जानता हूँ क्यों पूछ रहा है, तो जानता है कि फेल हुआ है लेकिन फिर भी चोट पहुँचाने के लिए। और जब फर्स्ट क्लास आता है एक बात करता, ये दुनिया छोड़िए ये निकम्मी है, लेकिन इसी निकम्मी दुनिया में से जो प्राप्त करना है उसकी बात कर रहा है। हमें इसको जीतना है, इसको समझना है, जानना है। तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं शास्त्रों के आधार पर, ऋषि मुनियों के विचारों का जो आलिंगन किया है, उतारा है, गले लगाया है, वह यही है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब जिम्मेदार हैं, ईश्वर ने हमें आपको जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी में एक मनोवैज्ञानिक बात है, मैं आपको एक जिम्मेदारी दिया कि भाई देखिए गेट पर कोई महात्मा आए हैं, उनको बुला के अंदर लाओ। आप उठे, अब जा समझिए एक पैर ऊपर गया, एक नीचे, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, अप्स एंड डाउन गए, फिर लाए महात्मा। आप गेट पर कब गए? खड़े रहते तब भी नहीं पहुँचते, बैठे रहते तब भी नहीं पहुँचते, और दोनों पैर खड़ा करोगे तो धड़ाम से गिरोगे।
अप्स एंड डाउन,
और फिर महात्मा जी को लेकर आए, वो भी हुआ। तो एक गेट तक जाना और फिर वापस आने के लिए पैर को कितनी बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। इसी तरह से लक्ष्य, द्वार मतलब लक्ष्य, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी जीवन में अप्स एंड डाउन करने पड़े। हम लोग कोई भी खुद साफ करूं कि मेरी माँ साफ करे कि नौकरानी, वो तो आपके बात है, लेकिन जब भी पुराने पद्धति से कपड़ा धोते थे तो पहले पानी में डुबाते थे, फिर उस पर साबुन लगाते थे, देखो पानी में डुबाकर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे किया, पुरानी पद्धति। आजकल तो मशीन आ गई, पता नहीं चल सकती, पुरानी पद्धति। फिर इसके बाद उस पर साबुन, आगे गया, पीछे गया, और फिर यहाँ जो पंजाब लोग बैठे हैं देखे, उस पर लकड़ी का होता, पानी में डालना, साबुन को लगाना, लकड़ी से पीटना, तो क्या हम उसके दुश्मन है? दुश्मन नहीं है, उसको ठीक कर रहे हैं। उधर भी कुछ कई बार ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं, पहले डुबाती है, फिर आगे पीछे ले जाती है, फिर एक बात करता, एक कुदरत है। और इसको जो नहीं स्वीकार करेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारे यहाँ छोटी सी कहानी आती है, मेरी दो कहानी है पुरानी, लेकिन मैं अपने ऊपर, मेरी दो लड़कियां, लड़कियों के मैंने शादी किया, दोनों अच्छे घर में हैं, समय ने एक लड़की को गरीब बना दिया और एक अमीर हो गई ज्यादा, प्रसव का समय आया, एक कहानी है। तो हमारी लड़की जो अमीर घर में है उसको सुविधाएं बहुत है, हमारी बेटी जो किसी तरह गरीब हो गई वहां सुविधा नहीं है। लेकिन कहानी कहती है सुविधाओं का होना अलग है, असुविधा होना ना होना अलग है। लेकिन अब बात को समझिए, लेकिन हमारी दोनों बेटियां अगर माँ बनना का विचार रखती हैं तो उन्हें प्रसव की पीड़ा को स्वीकार करने के लिए मन को तैयार करना पड़ेगा। उसे महल झोपड़ी से कोई मतलब नहीं। हमारे पास सुविधा है कि नहीं है, लेकिन जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सुविधा में से भी असुविधा में से भी अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, राम का जन्म सुविधा में हुआ लेकिन वनवास क्या असुविधा, और मनोविज्ञान कहता है ये असुविधा में ही, ये विरोध में ही, प्रतिकूलता में ही राम अपने जीवन को बनाए। अगर ये असुविधाएं कैकेयी के द्वारा, मंथरा के द्वारा कोई भी है आप जानते हैं, ये पैदा न की गई होती तो राम को कोई नहीं बनता। मैं हिंदुओं तक की बात बताऊं, 50% लोग राम के पिता दशरथ का नाम जानते हैं, दशरथ के पिता का नाम ही नहीं जानते। अभी गुजरात की बात करूं, जो हाथ जोड़कर गांधी मोहनदास करमचंद, गांधी से ही लोग मोहनदास करमचंद को जानते हैं, करमचंद के बाप का कोई नाम ही नहीं जानते। या विचार कीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं, उन्होंने हमें जन्म दिया लेकिन ये दुनिया तो उसी को मानेगी कि जिसने कुछ अपने जीवन को सुंदर बनाया। मैं ये कह रहा हूं, या विचार करो। तो हम आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो सुंदर बनाने में हमारे किसने सबसे सुंदर बात कही, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, दुख आए के सुख आए, ये दोनों का विचार करके समरा मतलब सहज रह, सुख में फूल जाएगा तो भी आगे नहीं बढ़ेगा, दुख में घबरा के बैठ जाएगा तो भी नहीं आगे बढ़ेगा। मैं सूरत जा रहा हूं, रास्ते में किसी ने खुद स्वागत किया तभी सूरत जाना है। स्वागत क्या है, ये अनुकूलता है, और किसी ने अपमान किया ये प्रतिकूलता। मुझे जब सूरत बीजी पटेल के यहाँ जाना है, संगना सोसाइटी जाना है, तो रास्ते में चाहे कोई मेरा मान करे कि अपमान करे, मेरा स्वागत करे कि तिरस्कार करे, दोनों का त्याग करे। इसलिए सब दर्शन करते नहीं है, इसका गलत अर्थ नहीं लगाना कि मैं तो सब में परमात्मा देखता हूं। दर्शन का तो विचार है, मैं विचार से सब में परमात्मा देखता हूं, लेकिन माँ को प्रणाम करूंगा और बेटी को आशीर्वाद दूंगा। भावाद्वैतम सदा कुर्यात क्रियाद्वैतम न कर्षित। हम विचार से एक है, व्यवहार से एक नहीं है। ये मेरी माँ है, माँ में पवित्रता का दर्शन करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, लेकिन माँ से आशीर्वाद मांगूंगा। हमारी बेटी है, उसमें परमात्मा का दर्शन करेंगे लेकिन आशीर्वाद देंगे। इसलिए हमारे ऋषियों ने कह दिया, तुम्हारी विचार शक्ति में समता रखिए, किसी से प्रभावित न होइए, ये समता है, और आगे बढ़िए। जैसे एक बात कहूं आगे बढ़ने की, मेरे सामने, चलो कार की बात ले लो, मेरे सामने ट्रक जा रहा है, अब मुझे उसके आगे निकलना है, तो ट्रक वाले को गाली नहीं देना है, पत्थर नहीं मारना है, पीछे से अपनी कार ट्रक से एक्सीडेंट कराने की कोशिश नहीं करना है, समय देख करके ओवरटेक कर आगे निकल जाओ। इसलिए जो चीज पसंद नहीं है भगाने की कोशिश मत करो। कितने लोग मेरे पास आए, महाराज जी आपके विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्रोध आ जाता है। मैंने कहा वेद विज्ञान दोनों का तय जो है उसे आप मिटा नहीं सकते, लेकिन उसको पीछे ला सकते हो। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, जैसे नदी है, हम नावड़ी से पार चले गए तो नदी पीछे हो गई, नदी को गाली देने से, लड़ने से, कई बार मैं ट्रेन में जाता हूं ना, तो कहीं कोई बात हो जाए थोड़ी बहुत, मैं किसी मंत्री की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ट्रेन में भी लोगों के मुख से सुना कि भाई मंत्री जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की, बहुत अच्छा किया, वो भी सुना हूं, और मंत्री को गाली लोग दी है वो भी सुना, जबकि मंत्री को मालूम ही नहीं कि कौन गाली दे रहा है कौन प्रशंसा कर रहा है। मैं आपसे कहता हूं हो सके तो प्रशंसा करो, क्योंकि निंदा करोगे तो विज्ञान भी कहता है। इस समय मनीषानंद जो बोल रहे हैं, अगर यहां पर आज की व्यवस्था हो तो ये मेरा विचार पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है, पावरफुल ट्रांसमीटर हो, उसके अनुसार लोगों के रिसीवर हो, भले कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन मनीषानंद जो बोल रहे हैं अंतरिक्ष में जा रहा है, और अंतरिक्ष से पूरे विश्व में फैला, और वो वापस मेरे पास आ रहा है, उसका एक उदाहरण दे दो। आप लोगों से अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड से बातचीत होती रहती है, अब यही उदाहरण देता हूं। मेरा शिष्य जरूरत पड़ने पर अमेरिका से मुझे फोन करता है, इंग्लैंड से, जापान, कहीं से भी, और मैं उसका उत्तर देता हूं, तो व्यवस्था क्या है? या मैं भी कभी फोन करता हूं, एक नंबर है हमारे पास, एक यंत्र है, उसमें कुछ है, डायल करते हैं, पहले अंतरिक्ष में जाता है, फिर टावर पे जाता है, फिर उन्हें करोड़ों नंबर चल रहे हैं लेकिन पकड़ता है, यंत्र की यह सुविधा है। और फिर सामने से भी आवाज आती है, गुरु जी आप कैसे हैं? मैं कहता बेटा तुम कैसे हो, जो बोलते सुनते हैं, ये यंत्र की व्यवस्था है। अब मैं विचार की व्यवस्था बताता हूं, जिसे मंत्र कहा गया। मैं यहां बैठे बैठे सोचूं, विचार करूं, अमेरिका में मेरा कोई शिष्य है या कहीं भी है, तो जैसे मोबाइल से एक यांत्रिक व्यवस्था में पहले अंतरिक्ष से टावर और फिर वो नंबर, इसी तरह से जब मैं अंदर विचार करूंगा तो मेरा विचार अंतरिक्ष में जाएगा, अंतरिक्ष से मेरे शिष्य पर जाएगा, और उसका विचार से लौट कर मेरे पास आएगा। अब मान लो कि उसका स्विच ऑफ है, उसका मोबाइल नहीं ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन भारतीय संस्कृति में सर्वे भवन सुखना की जो बात की गई वो जबरदस्त वैज्ञानिक शब्द का विनाश नहीं है। इस समय जो शब्द बोला जा रहा है अगर वैज्ञानिक व्यवस्था हो तो पूरे विश्व में इसका प्रसार होगा। ठीक है कि व्यवस्था से सुनने में आ रहा है, टीवी की व्यवस्था देखने में आ रहा है, मुझे देख रहे हैं, लेकिन ये मेरा चेहरा मेरी आवाज पूरे विश्व में जा रही है। मेरी प्रसन्नता मेरा आनंद आपकी प्रसन्नता आपका आनंद है पूरे विश्व के पर्यावरण को शुद्ध कर रहा है। जब आप हताश होते हैं, निराश होते हैं, कमजोर होते हैं तो केवल आप नहीं होते बल्कि पर्यावरण पर भी इसका असर पड़ता है। और कभी देखना है तो आपके जो कुत्ते पालते हैं उन पर देख लीजिए, सांप पालते हैं उनको देख लीजिए, जंगल में आपका कुत्ता आप कुछ मत बोलिए लेकिन आप गमगीन हो जाइए, दुखी हो जाइए तो कुत्ता भी सामने आके पूछ रहा उसको आज मालिक दुखी है, बिना बोले उसको भी पता लग जाए। जंगलों में भरवाड़ को, भक्तों को, संतों को आज तक कभी नाग सांप शेर नहीं मारा है न काटा। लेकिन जो गलत लोग हैं तो यहाँ सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हमारे अंदर जब पवित्रता का विचार आता है तो हमारे शरीर से सुगंध निकलती है, और जब खराब विचार आते हैं तो दुर्गंध निकलती है। इसलिए आप पढ़े लिखे लोग हैं, वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण, हमने तो सुगंध और दुर्गंध का, लेकिन वैज्ञानिक हमारी हर बात को विज्ञान के तराजू पे तौल रहे हैं। इसलिए जो सुगंध है वह इथिलियम ऑक्साइड और जो दुर्गंध है वह कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन विज्ञान कहता है ठीक है, इसलिए इसका असर पर्यावरण पे होता है। जैसे कुछ हो गया आपके जैसे 1000 रुपया, अच्छा भाई भगवान ने जो किया थे क्यों ठीक था, ये विज्ञान कह रहा है। आपकी जेब से 1000 रुपया गिर गया इसलिए विज्ञान कहता है कि बेकार नकारात्मक बातें सोचकर स्वयं और परिवार पर पर्यावरण को प्रदूषित न करो, इसलिए जो होना था वो हो गया। कितनी जबरदस्त बात अब वैज्ञानिक कह रहे हैं, उसका असर न पड़ेगा। इसलिए हमारा नकारात्मक सोचना, हमारे अंदर घृणा आना, दूसरे के लिए अपमान की बात का विचार आना, ये सब ठीक नहीं। मनोवैज्ञानिक उदाहरण, मैं आपको गुलाब का फूल दूंगा तो पहले सुगंध मेरे आएगी फिर आपको आएगी, अगर मैं कीचड़ दूंगा तो कीचड़ की दुर्गंध भी पहले मुझे आएगी फिर आपको आएगी। इसलिए विज्ञान कहता है हर परिस्थिति में आनंद में, और हर परिस्थिति में आनंद में रहने वाला विकट से विकट परिस्थिति में से निकल जाएगा। यही अर्जुन के साथ हुआ, तो हरात के साथ हुआ, बड़े बड़े भक्तों के साथ हुआ। ठीक है, प्रभु जो किया ठीक किया, किसी को आरोप नहीं लगाए। आप सुदामा की कहानी सुनते हैं, प्रहलाद की सुनते हैं, भक्तों की सुनते हैं, ध्रुव की सुनते हैं, बुरा न मानिएगा। नरसिंह मेहता तो आपके सामने है, घर के लोग विरुद्ध थे, कहीं भक्ति में बैठ गए, ठंडी का समय रात में आए। अब सारी कहानी तो नहीं कहना, अब कौन था क्या था सब जानता हूँ, लेकिन मैं दोष नहीं देता। लेकिन घर का दरवाजा बंद कर दिए और सारी रात ठंडी बाहर ही हरे कृष्णा बोलते रहे, लेकिन किसी को दोष नहीं दिया, पड़ी किसी को दोष नहीं दिया। ठीक है, और कितनी बातें। इसलिए आज का जो विषय है बड़ा ही सुंदर है, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि हमें आपको जो 100 साल का जीवन मिला है ये बहुत कीमती मिला है, कोई मामूली नहीं मिला। जब मैं गर्भ में आया, आप और हम सब, हम लिक्विड थे, लार्वा बने, मेढक बने, छठे महीने में वानर बने और सातवें में वाकट के नर या नारी बने और फिर प्रकट हुए। ये मेरे पिता का विस्फोट मेरी माँ ने स्वीकार किया। आगे की विधि न पिता के हाथ में है न किसी के हाथ में है, नेचर मानो कि परमात्मा मानो, लेकिन हम क्रम से बने। तो जा विचार करो, मेरी माँ ने शांति से, मेरे पिता का एक प्रक्रिया है जिसे धर्म माना जाता है, विस्फोट स्वीकार किया। माँ प्रसन्न रहे, आनंद में रहे, नेचर अपना काम कर रही है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। जैसे विस्फोट की शक्ति को मेरी माँ ने स्वीकार किया और आगे नेचर अपना काम अपने आप कर रही है, इसलिए आपसे कहता हूं कि इस जगत में जो संघर्ष है, जो प्रतिकूलता है, जो घर्षण है, उसे आप स्वीकार करें, आनंद में रहें और नेचर मानो कि परमात्मा मानो। जैसे एक लिक्विड से सातवें महीने में हम नर या नारी का रूप धारण करते हैं बिना किसी के संकल्प से, और 9 महीने के बाद प्रकट होते हैं और फिर हमारा कर्म शुरू होता है। इसलिए मेरे प्रिय आत्मन, आपके सामने जो विस्फोट है, संघर्ष है, जो घर्षण है, उसे स्वीकार करो और समय आपके अंदर से शक्ति प्रकट करेगा, और वो जब शक्ति प्रकट होगी तो रोज की जिम्मेदारी जो हमें मिली है वो निभाने की शक्ति परमात्मा ने दिया है। आज हम ट्रेन में चलते हैं, प्लेन में चलते हैं, हमारे पास 50 लाख की गाड़ी है कि 20 लाख की, हमारा ड्राइवर अच्छा है, आप और हम खुद ड्राइवर हैं, ये कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन सही सलामत पहुंचना परमात्मा का है। इसलिए कर्म हमारे हाथ में है और सही सलामत पहुंचाना, लक्ष्य तक ले जाना परमात्मा का है। आप लोगों ने महाभारत का अध्ययन अगर अच्छी तरह किया है, लोग कुरान अच्छी तरह जानते हैं, बाइबल अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम हिंदू लोग अपना ही है। अगर आप देखिए, मुझे तो पूरा विश्वास है, जब धर्मराज को थोड़ा हम आया है, जब अर्जुन को भी आया हम, तो उस समय बहुत कम लोग जानते हैं, कहानी तो अपनी ही है। भीष्म का पुत्र घटोत्कच, उसका पुत्र बर्बरा, बड़ी शक्ति उसमें थी। एक ऐसी घटना घटी, उस समय जिक्र करना नहीं चाहता, लेकिन किसके हाथों से, सुदर्शन चक्र से उसका सिर कटा। लेकिन उसने प्रार्थना की, मैं वास्तविक रूप में महाभारत देखना चाहता हूं, मुझे दिव्य दृष्टि दीजिए, मुझे विश्वास है। जब इन लोगों का अहंकार आया और मुलाकात बर्बरा से होती है, पांडव मतलब उनके पुत्र के पुत्र पौत्र से, तो वहां पर कटा हुआ सिर बोलता है, तुम लोग क्या अहंकार करो, जो कुछ मैंने देखा है तुम्हें फिर से दिखा सकता हूं, इतनी शक्ति मेरे में है, देखो एक एक कर। तो वहां पर दिखाई पड़ता, कि गदा कोई चला रहा है, मतलब भीम चला रहा है, वाण अर्जुन चला रहा है, भाला धर्मराज चला रहा है, लेकिन आगे सुदर्शन चक्र है। तब जाके पांडव घबरा गए और वहां पर यही विचार आ दिया जा रहा है। अपने भगवान को जिसे मानते हो अपना साथी बना लो, उसमें पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखो, वो केवल इशारा करेगा, खुद नहीं करेगा। ये जो पांच पांडव हैं, ये पांच आपकी उंगलियां हैं। कभी अर्जुन से करवाया, कभी धर्मराज से करवाया, कभी भीम से कराया, कभी नकुल से, कभी सहदेव से। तो ये पढ़ करके मनोवैज्ञानिक कहते हैं, आप जिसे मानते हैं उसे अपना साथी बना लो, पूर्ण विश्वास करो। विकट से विकट परिस्थिति में वो किसी को निमित्त बनाएगा, लेकिन निमित्त बनाने के बाद भी गुप्त रूप से उसकी शक्ति रहेगी। इसलिए पांडव ने अपने मन के बदला कि जब प्रभु साथ रहे तो उनकी कृपा से सब कुछ होता है, इसलिए सफलता के बाद भी कोई अहम करने की जरूरत नहीं, वो सब दिखाई दे। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा, पंडिता समदर्शिना, जो ज्ञानी है उनमें भक्ति भी है, कर्म भी है। राम है, कर्म भी है, भक्ति है और ज्ञान है। रावण में कर्म और ज्ञान है, भक्ति नहीं, इसलिए राक्षस हो गया। कृष्ण में कर्म भी है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, लेकिन कंठ में नहीं है। तो हमें अपना कर्म करना है, परमात्मा हमारे साथ है या रख के करना है, और समझ के करना है, विवेक से। हम सबके साथ परमात्मा है, परमात्मा के स्वरूप जो आप मानते हैं वही है। आप राम मानिए, कृष्ण मानिए, महावीर मानिए, भगवान बुद्ध मानिए, जीसस क्राइस्ट मानिए, पैगंबर मानिए, अम्बा जी मानिए, कालिका माँ मानिए, जो मानना, नदी मानिए, गंगा या नर्मदा या कोई पेड़, कुछ भी, सब में वो चराचर करता हूँ, कहीं कोई खंडन नहीं है, लेकिन टोटल उसी को मानिए। आदर सबका कर, आदर मुझे अपने पिता का करना है, लेकिन पिता की जगह चाचा को नहीं बैठा, चाचा का आदर करना है। मुझे आदर अपनी माँ का करना है, लेकिन मासी को माँ की जगह नहीं बैठाना है, मासी का भी अपमान नहीं करना। जिसे आप मानते हैं उसके पर थोड़ शरणागत रहें, किसी देवता का, किसी धर्म का खंडन न करें। ये है समदर्शन। और रही व्यवहार की बात, तो समदर्शन का मतलब है विचार का। अगर कोई रावण है, कोई कंस है, तो वहाँ समदर्शन शरीर से नहीं चलेगा, इस समाज में से उसको हटाने के लिए, जैसे हमारे शरीर में कफ हो जाए उसे हटाने के लिए दवा लेनी पड़ती है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाए उसके लिए भी, इस शरीर में भी, इस शरीर मेरा है, भोजन मेरा है, इसमें खून पैदा हुआ, मलमूत्र भी हुआ, मेरा ही, उसे निकालना जरूरी है। तो आज जो समदर्शन है वो विचारों का, हर परिस्थिति में, अनुकूलता प्रतिकूलता में मन के दृढ़ता को रखो और वेद के दो विचारों को याद रखो, चाहे सुख है कि दुख है, जो आज है वो धीरे धीरे सुख भी जाएगा और दुख भी जाएगा, सुख भी जाएगा दुख भी जाएगा। इसलिए न सुख का गुमान करो न दुख के लिए रो, जो सुख है उसके लिए हंसने की भी जरूरत नहीं, वो भी जाएगा, ये पूनम भी जाएगी और अमावस भी जाएगी, केवल सहज भाव से अपने कर्तव्य का पालन करें। और किसी भी क्षण कैसे भी हो, बिगड़ से बिगड़ परिस्थिति में, हमारी आपकी आस्था में, विश्वास में, कोई कमजोरी नहीं आना चाहिए। इस तरह अपने कर्तव्य का पालन करना ये समदर्शन है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गृहस्थ सुनचौ सुपाके च पंडिता समदर्शना। आइए हम विचारों से कर्मयोगी भक्तियोगी ज्ञानी बन करके सहज भाव से अपने कर्म को करें, सब में परमात्मा का दर्शन करें, विचारों से वर्तन न करें। लेकिन कोई रावण है कंस है तो उसका उस ढंग से हमें रास्ता निकालना ही पड़ेगा। हमारे शरीर में रोग है तो उसे निकालना पड़ेगा, समाज में रोग है तो उसे निकालना पड़ेगा। तो रोग को निकालने का उपाय जहाँ है वो मैं बताऊंगा, आप न करना। लेकिन अभी आप सहज हो जाओ, परमात्मा आपके साथ है और विगत से विगत परिस्थिति में हताशा निराशा में आकर के अपने जीवन में नकारात्मक बातें लाकर अपने विकास को मत रोको, इन सबको दफना दो, जला दो। और इसमें जब जलाओगे तो जैसे शमशान में अग्नि प्रज्वलित होती है, इसी तरह हताशा निराशा को जलाओगे तो उसमें से आनंद प्रकट होगा। और उसी आनंद को लेकर के रोज आना, अपने कर्तव्य का पालन करो। ये है समदर्शन। हरि ओम।
सदगुरु
क्या क्या कह रहे हैं? अब भोजन लेके पहले
Thank you.